सामाजिक जीवन। वैदिक साहित्य में समाज शास्त्रीय सामग्री बहुत अधिक है, यहाँ विस्तृत विवेचन अभिष्ट नहीं है, अतः मुख्य विषय बहुत संक्षेप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। एक, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। यजुर्वेद और अथर्वेद में चारों वर्णों का उल्लेख अनेक बार हुआ है। यजुर्वेद में इन चारों वर्णों के कर्तव्यों का बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। ब्राह्मणे ब्राह्मणम क्षत्राय राजन्यम मरुद्भ्यो वैश्यम तपसे शूद्रम, अर्थात एक ब्राह्मण का कर्तव्य है ब्राह्मण ज्ञान शिक्षा और धर्म संबंधी सभी कार्य। दो, क्षत्रिय का कर्तव्य है क्षत्र राष्ट्र और देश की सुरक्षा। तीन, वैश्य का कर्तव्य है मरुत देवों की तरह देश देशांतर से व्यापार और धन की वृष्टि करना, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को संभालना। चार, शूद्र का कर्तव्य है तपस श्रम साध्य सभी कार्य शिल्प आदि। अथर्वेद में ब्रह्म गवि के प्रसंग में ब्राह्मण के इन गुण कर्मों का उल्लेख है। श्रम तपस्या ज्ञान सत्य श्री यश श्रद्धा दीक्षा और यज्ञ निष्ठा। अथर्वेद में निर्देश है कि आवश्यकता पड़ने पर ब्राह्मणों को भी धनुष रखने शस्त्रास्त्र चलाने और शत्रुओं को नष्ट करने का अधिकार है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि वैदिक वर्ण व्यवस्था कर्मणा थी, यह गुण और कर्म पर आश्रित थी, इसका आधार वृत्ति या पेशा था, न कि जन्मना जन्म से। कोई भी शिक्षा क्षेत्र को चुनने वाला ब्राह्मण हो सकता था और सैन्य सेवा से संबंध होने पर क्षत्रिय। तपोबल के आधार पर विश्वामित्र को महर्षि माना गया और वे ऋग्वेद के वैदिक ऋषियों में मान्य हुए। वैदिक काल में चारों वर्णों में सामंजस्य प्रेम और सद्भाव था। ऊंच नीच छोटे बड़े स्पृश्य अस्पृश्य आदि के भाव सर्वथा नहीं थे। चारों वर्णों को वेदाध्ययन का अधिकार था, अतएव यजुर्वेद और अथर्वेद में चारों वर्णों की सुख समृद्धि और तेजस्विता की प्रार्थना की गई है। चारों वेदों में जाति व्यवस्था जाति प्रथा या जन्मना जाति का उल्लेख नहीं है। वेदों में ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण ब्राह्मण विप्र और देव शब्दों का प्रयोग है। क्षत्रिय के लिए क्षत्र क्षत्रिय और राजन्य शब्द है। वैश्य के लिए वैश्य विश आर्य समर्य शब्दों का प्रयोग है। वेदों में कुछ रोचक प्रसंग हैं, उनमें विप्र राज्य और समर्य राज्य का उल्लेख है। ऋग्वेद और अथर्वेद में विप्र राज्य का उल्लेख है और कहा गया है कि यह समुद्र की तरह फैला हुआ था। इसमें यज्ञ और धार्मिक क्रियाकलाप का विशेष बल दिया जाता था। समर्य राज्य के विषय में कहा गया है कि यह महान या उत्कृष्ट था, इसमें धन धान्य की समृद्धि और सैन्य शक्ति प्रबल थी। कुछ न्यूनताओं के कारण ये दोनों शासन पद्धतियां लोकप्रिय नहीं हुई और समाप्त हो गईं। उल्लेखनीय है कि वेदों में शूद्रों को समानता का अधिकार दिया गया है, उन्हें कहीं भी हीन या निकृष्ट नहीं माना गया है, उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया है, उनको राजकृत अर्थात राजा के निर्वाचकों में स्थान दिया गया है। इनमें रथकार कर्मार सूत शूद्र वर्ग से हैं। इसी प्रकार रत्नियों में भी तक्षा रथकार और सूत को स्थान दिया गया है, ये सभी शूद्र वर्ग से संबद्ध हैं। दो, आश्रम व्यवस्था। वेदों में आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम के विषय में बहुत सामग्री मिलती है। वानप्रस्थ और संन्यास के विषय में बहुत कम सामग्री उपलब्ध है। ब्रह्मचर्य आश्रम यह उपनयन संस्कार से प्रारंभ होकर समावर्तन संस्कार के साथ समाप्त होता था। उपनयन संस्कार शिक्षा आरंभ का प्रतीक था। इस संस्कार के बाद शिष्य और शिष्याएं वेद और शास्त्रों का अध्ययन करते थे। बालकों के तुल्य ही बालिकाओं का भी यज्ञोपवीत होता था, वे भी मेखला पहनती थी। बालिकाओं को गृह कार्य और ललित कलाओं की शिक्षा देकर सुयोग्य गृहिणी बनाया जाता था। जिस प्रकार विवाह से पूर्व बालकों को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था, उसी प्रकार बालिकाएं भी ब्रह्मचारिणी रहती थी। वेदों में ब्रह्मचर्य एवं संयम पर बहुत बल दिया गया है। केवल बालक और बालिका ही नहीं अपितु आचार्य के लिए भी अनिवार्य था कि वह पूर्ण संयमी हो। यज्ञोपवीत के तीन धागे तीन ऋणों के प्रतीक हैं। ये ऋण हैं ऋषि ऋण देव ऋण पितृ ऋण। तैत्तरीय संहिता में कहा गया है कि मनुष्य पर ये तीन ऋण जन्म से ही होते हैं। इन्हें उतारना उसका कर्तव्य है। इन्हें उतारने का प्रकार यह है, एक ब्रह्मचर्य पालन और ज्ञान प्रसार से ऋषि ऋण उतरता है, दो यज्ञ करने से देव ऋण उतरता है, तीन माता पिता की सेवा और उत्तम संतान को जन्म देने से पितृ ऋण उतरता है। ब्रह्मचर्य के नियमों में मुख्य संयमी और तपस्वी जीवन बिताना, भोग विलास की सामग्री से दूर रहना तथा अनुशासित दिनचर्या या कठोर अनुशासित जीवन ही उनके भावी जीवन को सुखमय बनाता है। बालक स्नातक होने पर विवाह करते थे, कुछ आजीवन ब्रह्मचारी रहते थे। इसी प्रकार बालिकाएं भी स्नातक होकर कुछ विवाह कर लेती थी, उन्हें सद्योद्वाहा कहते थे और कुछ आजन्म ब्रह्मचारिणी रहती थी, उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा गया है। ये तपोमय जीवन बिताते हुए शास्त्र चर्चा में मग्न रहती थी। ऐसी ब्रह्मवादिनी नारियों में गार्गी, मैत्रेयी आदि उल्लेखनीय है। गृहस्थ आश्रम, विवाह के पश्चात गृहस्थ आश्रम प्रारंभ होता है। वेदों में गृहस्थ दंपत्ति के कर्तव्यों का बहुत विस्तार से वर्णन है। पति के कर्तव्यों में उल्लेखनीय बातें ये हैं: पत्नी के भरण पोषण का पूर्ण उत्तरदायित्व निभाना, परिवार की उन्नति की व्यवस्था करना, संतान की सुशिक्षित का प्रबंध करना, संयमी जीवन बिताना। पत्नी के कर्तव्यों में विशेष उल्लेखनीय बातें ये हैं। ऋग्वेद का कथन है कि जायदस्तम अर्थात जाया पत्नी इति ही अस्तम घर है, उसको ही संस्कृत में कहा गया है न गृहम गृहम इत्याहु गृहिणी गृहमुच्यते, घर को घर नहीं अपितु गृहिणी को गृह कहते हैं। घर की पूरी व्यवस्था संभालना पत्नी का कर्तव्य है। वह बड़ों की सेवा करे, पति की आवश्यकता पूरी करे, संतान का भरण पोषण और शिक्षा की व्यवस्था करे। वह परिवार की स्वामिनी होती है, अतः उसे गृह स्वामिनी, गृह लक्ष्मी, सामग्री साम्राज्ञी आदि कहा गया है। सास ससुर भी उसका कहना मानने को बाध्य है। अथर्ववेद में पारिवारिक जीवन को सुखद बनाने के लिए कुछ सुंदर उपदेश हैं। संक्षेप में वे ये हैं: पति पत्नी सदा उद्यमशील हो, नवीन उद्योग करें, उद्यमी को ही इस संसार में सुख मिलता है, परिवार में मधुरता का वातावरण हो, परस्पर मधुर वचन बोले, हास्य और आमोद का वातावरण हो, पति पत्नी सुशिक्षित हो और व्यवहार कुशल हो, पत्नी विदुषी तेजस्विनी और वक्ता हो, भाई बहनों और भाई भाइयों में द्वेष न हो, बालक माता पिता के आज्ञाकारी हो, पत्नी पति की आज्ञाकारिणी हो और पति से सदा मधुर वचन बोले, घर के सुरक्षा के विषय में दोनों सदा सावधान रहे, अधिक विषय भोग में न फंसे। वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम, वेदों में इस विषय की सामग्री अत्यल्प है। भिक्षुक पारिवाजक आदि शब्द वेदों में नहीं है। यति मुनि और मुमुक्षु शब्दों का भी प्रयोग 2-3 बार है। यति शब्द का संबंध यम धातु से है। संयमी जीवन बिताने वाले को यति कहते थे। मुनि का संबंध मनन से है। जो मनन चिंतन और स्वाध्याय में मग्न रहते थे उन्हें मुनि कहा जाता था। अथर्ववेद में मुनिकेशम शब्द आया है। इससे ज्ञात होता है कि मुनि जटा रखते थे, सन्यासी मोक्ष के लिए प्रयत्नशील रहता था, अतः उसे मुमुक्षु कहा गया है। 3 वेदों में नारी का गौरव, वेदों में नारी को बहुत आदरणीय स्थान दिया गया है। वह पुरुष की सहयोगी और सहायक है। जायदस्तम स्त्री को ही घर कहा गया है। विवाह के पश्चात उसे पति गृह, गृह पत्नी, गृह स्वामिनी का अधिकार प्राप्त होता है। एक ओर उसे पति, सास ससुर आदि की सेवा शुश्रूषा तथा उनकी देखरेख का उत्तरदायित्व दिया जाता है, तो दूसरी ओर उसे गृह स्वामिनी के रूप में सास ससुर ननंद आदि की सामग्री साम्राज्ञी कहा गया है। स्त्री सहधर्मिणी होती है, उसे अर्धांगिनी कहते हैं, इसलिए पत्नी के बिना यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। ऋग्वेद में स्त्री का गौरव बताते हुए उसे ब्रह्मा कहा गया है। इसका अभिप्राय यह है कि वह ज्ञान में उत्कृष्ट होती है। वह बालकों के शिक्षण के अतिरिक्त यज्ञ में भी ब्रह्मा का स्थान ग्रहण कर सकती है और विभिन्न संस्कार करा सकती है। वेदों में इंद्राणी को आदर्श नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसका कथन है कि मैं समाज में मूर्धन्य हूँ, मैं अग्रगम्य हूँ और मैं प्रखर वक्ता हूँ। इंद्राणी का कथन है कि कोई मुझे अबला न समझे, मैं सबला हूँ और वीर पुत्रों की जननी हूँ। वेदों में नारियों के शौर्य की बहुत चर्चा है। तैत्तरीय ब्राह्मण में इंद्राणी को सेना की देवता कहा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है, ऐसा करने से सेना के शौर्य में निखार आता है। इंद्राणी की सेनानी बताते हुए कहा गया है कि वह अजेय और अघृष्य है। इंद्राणी के लिए कहा गया है कि वह शत्रु सेना को काटती हुई आगे बढ़ती है। ऋग्वेद में स्त्री सेना का भी उल्लेख है। असुरों ने स्त्री सेना को आगे किया। ऋग्वेद में वर्णन है कि शत्रुओं से युद्ध करते हुए विश्वला का पैर कट गया था। अश्विनी कुमारों ने उसे नकली लोहे की टांग लगा दी और वह फिर युद्ध में भाग ले सकी। इसी प्रकार मुद्गल की पत्नी के लिए कहा गया है कि उसने असुरों से युद्ध करके गाय छुड़ा ली। अथर्ववेद में वर्णन है कि स्त्री पति के साथ सामूहिक यज्ञों और युद्धों में जाती थी। मंत्र में समन शब्द का प्रयोग है। इसके 2 अर्थ हैं, सभा या समारोह और युद्ध। दोनों अर्थ यहाँ संगत हैं। ऋग्वेद और यजुर्वेद में स्त्री के लिए यह विशेषण दिए गए हैं, इनसे उनके शौर्य और गौरव पर प्रकाश पड़ता है। इनमें नारी को अषाढ़ा सहमाना, सहस्त्रवीर्या, अस्पत्न्या, सपत्नी, जयंती, अभिभूवरी आदि कहा गया है। वेदों में मंत्र दृष्टा ऋषि के रूप में भी उनका योगदान स्पृहणीय है। 422 मंत्रों की दृष्टा ऋषिकाएं हैं। इनमें विशेष उल्लेखनीय ये हैं इंद्राणी, शची, अपाला, घोषा, काक्षीवती, लोपा, मुद्रा, श्रद्धा, कामायनी, वाक, आभरणी, सूर्या, सावित्री, विश्वावारा, आत्रेयी, उर्वशी, अदिति।